रेडियो नेपाल है। अब सीमा शर्मा से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। प्रतिनिधि सभा द्वारा वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयक 2082 बहुमत से पारित। संसद में प्रधानमंत्री के साथ प्रश्नोत्तर कार्यक्रम की मांग करते हुए प्रतिनिधि सभा की बैठक में विपक्षी दलों का अवरोध। आर्थिक सुधार और निजी क्षेत्र का मनोबल बढ़ाने के उद्देश्य से आगामी आर्थिक वर्ष का बजट लाने की पूर्व अर्थमंत्रियों की सलाह। और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ आगामी शनिवार जाएंगे चीन की औपचारिक यात्रा पर। अब समाचार विस्तार से। प्रतिनिधि सभा की बैठक ने वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयक 2082 को बहुमत से पारित कर दिया है। प्रतिनिधि सभा की आज हुई दूसरी बैठक में अर्थमंत्री स्वर्णिम वागले ने बागले द्वारा प्रस्तुत वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयक को सदन से बहुमत से पारित किया। इसी तरह बैठक ने प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह की ओर से कानून न्याय तथा संसदीय मामला की मंत्री शोभिता गौतम द्वारा विचारार्थ प्रस्तुत तीन विधेयकों को भी स्वीकृति प्रदान की। प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन प्रथम संशोधन विधेयक 2083, मतदाता नामावली प्रथम संशोधन विधेयक 2083 तथा राष्ट्रीय विधि विज्ञान प्रयोग शाला स्थापना एवं संचालन विधेयक 2081 को सदन ने बहुमत से पारित किया। विधेयकों की स्वीकृति के दौरान विपक्षी दलों के सांसदों ने प्रधानमंत्री द्वारा स्वयं विधेयक प्रस्तुत किए जाने, सांसदों द्वारा उठाए गए विषयों का जवाब देने तथा संसद के प्रति जवाबदेह बनने की मांग करते हुए रोस्ट्रम के सामने खड़े होकर विरोध और नारेबाजी की। सभामुख डोल प्रसाद अर्याल ने सदन को जानकारी दी कि स्वीकृति तीनों विधेयकों पर संशोधन प्रस्तुत करने के इच्छुक सांसद संघीय संसद सचिवालय में संशोधन दर्ज करा सकते हैं। इससे पहले प्रतिनिधि सभा की आज की पहली बैठक में विपक्षी दलों ने संसद में प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह की अनुपस्थिति और जवाब की मांग करते हुए अवरोध किया था। सभामुख अर्याल द्वारा प्रधानमंत्री की ओर से मंत्री शोभिता गौतम को विधेयकों को आगे बढ़ाने का समय दिए जाने के बाद विपक्षी सांसद अपनी सीटों से उठकर विरोध करने लगे। विपक्ष का अवरोध जारी रहने पर सभामुख ने प्रतिनिधि सभा की पहली बैठक को 15 मिनट के लिए स्थगित कर दिया। बैठक में सांसदों ने सड़क दुर्घटना न्यूनीकरण, ट्रामा नीति की आवश्यकता, आपदा जोखिम न्यूनीकरण, भूकंप पीड़ितों के लिए आवास व्यवस्था तथा वित्तीय सामान्यीकरण, अनुदान में कटौती जैसे विषयों पर सरकार का ध्यान आकर्षित कराया। सांसदों ने यह भी कहा कि मानसून शुरू होने वाला है और इस वर्ष औसत से कम वर्षा होने का अनुमान है। धान रोपाई के समय पानी की कमी किसानों और देश के लिए बड़ा संकट बन सकती है, इसलिए कम पानी में होने वाली धान की खेती और बीज किसानों तक पहुंचाने की मांग की गई। सांसदों ने हुमला और बाजुरा में सीमा विवाद को लेकर हुई घटनाओं पर सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए तत्काल समाधान की मांग की। सांसदों ने डेयरी किसानों को समय पर भुगतान नहीं मिलने का मुद्दा उठाते हुए 15 दिनों के भीतर अनिवार्य भुगतान व्यवस्था लागू करने की मांग भी की। सांसदों ने वैदेशिक रोजगार के दौरान श्रमिकों के ठगे जाने की घटनाओं का उल्लेख करते हुए फ्री वीजा फ्री टिकट व्यवस्था को प्रभावी ढंग से लागू करने की मांग की। बैठक में आज भी श्रम संस्कृति पार्टी के अध्यक्ष हर्क शामपांग ने प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह की खोज करते हुए प्ले कार्ड दिखाकर विरोध प्रदर्शन किया। अर्थमंत्री डॉ स्वर्णिम वागले ने पूर्व अर्थमंत्रियों के साथ आगामी बजट में समावेश करने के विषय पर सुझाव लिया है। अर्थमंत्री डॉ स्वर्णिम वागले ने आगामी बजट में शामिल किए जाने वाले विषयों पर सुझाव लेने के लिए 8 पूर्व वित्त मंत्रियों से मुलाकात की। बैठक के दौरान उन्होंने बताया कि सुशासन के आधार पर आम नेपाली नागरिकों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने वाला बजट लाने की तैयारी की जा रही है। उन्होंने कहा कि आगामी बजट निर्माण में पूर्व वित्त मंत्रियों के अनुभव और सकारात्मक अभ्यासों को अपनाते हुए नई परिस्थितियों के अनुसार बजट तैयार किया जाएगा। पूर्व वित्त मंत्री शंकर कोइराला ने पुराने आर्थिक प्रतिवेदनों का अध्ययन कर नीति निर्माण करने की आवश्यकता बताई। उन्होंने बिजली व्यापार में निजी क्षेत्र को खुला करने, औद्योगिक क्षेत्र का विस्तार करने तथा हेजिंग नीति आगे बढ़ाने का सुझाव दिया। पूर्व वित्त मंत्री डॉ युवराज खतिवड़ा ने अत्यधिक महत्वाकांक्षी राजस्व राजस्व लक्ष्य न रखने की सलाह देते हुए कहा कि राजस्व वृद्धि दर 10 से 12 प्रतिशत के बीच सीमित रहनी चाहिए। पूर्व वित्त मंत्री डॉ प्रकाश चंद्र लोहनी ने सरकार और निजी क्षेत्र के बीच सहयोग बढ़ाने पर जोर देते हुए छोटे मझौले और बड़े उद्योगों को समान रूप से प्रोत्साहित करने वाली नीति की आवश्यकता बताई। पूर्व वित्त मंत्री सुरेंद्र पांडे ने बड़ी परियोजनाओं की संख्या कम कर सीमित राष्ट्रीय गौरव परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित करने का सुझाव दिया। पूर्व वित्त मंत्री डॉ प्रकाश शरण महत ने सामाजिक सुरक्षा भत्ते को केवल लक्षित वर्ग तक सीमित रखने और सरकारी उद्योगों तथा संपत्तियों को लीज मॉडल में संचालित करने का सुझाव दिया। पूर्व वित्त मंत्री वर्षमान पुन ने कहा कि पिछले आधारभूत संरचना निर्माण का अपेक्षित परिणाम कमजोर रहा है, इसलिए पर्यटन आधारभूत संरचना में निवेश बढ़ाया जाना चाहिए। पूर्व वित्त मंत्री विष्णु प्रसाद पौड़ेल ने वास्तविक खर्च के आकलन के आधार पर बजट लाने की बात कही। पूर्व वित्त मंत्री जनार्दन शर्मा ने बजट को राजनीतिक प्रतिबद्धताओं को लागू करने वाला दस्तावेज बताते हुए सरकारी खर्च में कटौती की आवश्यकता बताई। बैठक में शामिल अधिकांश पूर्व वित्त मंत्रियों ने आर्थिक सुधार को गति देने, निजी क्षेत्र का विश्वास बढ़ाने, खर्च नियंत्रण करने तथा उत्पादनमुखी क्षेत्रों में निवेश बढ़ाने पर समान राय व्यक्त की। नेपाल प्रहरी और संबंधित निकायों के सहयोग से शिक्षा तथा खेलकूद मंत्रालय ने शैक्षिक परामर्श व्यवस्था में देखी गई विकृतियों और अनियमितताओं को समाप्त करने के लिए देश भर में शुद्धिकरण अभियान शुरू किया है। शैक्षिक परामर्श सेवा तथा भाषा शिक्षण संबंधी निर्देशिका 2073 के अनुसार अनुमति न लेने वाले तथा विद्यार्थियों को झूठे दस्तावेज और आश्वासन देकर आर्थिक ठगी करने वाले संस्थाओं के खिलाफ अभियान के रूप में कार्रवाई शुरू की गई है। शिक्षा और गृह मंत्रालय के निर्देशन एवं समन्वय में इसी जेठ 1 गते काठमांडू उपत्यका अपराध अनुसंधान कार्यालय ने उपत्यका के विभिन्न स्थानों पर संचालित 95 शैक्षिक परामर्श कंसल्टेंसी संस्थानों पर एक साथ छापा मारकर कार्रवाई शुरू की थी और अब इस अभियान को पूरे देश में चलाने की जानकारी दी गई है। समाचार रेडियो नेपाल से प्रसारित किए जा रहे हैं कुछ देर विज्ञापन।
हजुर दर्शन,
भाग्यवानी बाबु, राम्ररी आइपुग्नु भयो नि।
हजुर राम्ररी पुगे, ऊ चाहिँ मेरो कलेजको बेस्ट फ्रेन्ड।
नमस्ते बाबुजू।
नमस्ते, आउनु न भित्रै।
हुन्छ बाबुजू।
अनि दादा त अफिस गइसक्नु भयो होला है?
उहाँ त बिहानै हो। हुन्छ, तपाईँहरू फ्रेस हुँदै गर्नु न, म खाना तयार गर्दै गर्छु है।
हस् हस् बाबुजू।
ओए वाइफाई होला नि, पासवर्ड माग्न।
त पनि एनटीसी को सस्तो डे प्याक छँदैछ नि।
ए हो र,
एनटीसी को डे प्याक लिन *1415# डायल गर्न।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। विभिन्न 8 विश्वविद्यालयों में रिक्त कुल 218 उपकुलपति पदों के लिए प्राप्त आवेदनों पर चयन तथा सिफारिश समिति ने अध्ययन शुरू कर दिया है। त्रिभुवन विश्वविद्यालय के उपकुलपति पद के लिए 50 लोगों ने आवेदन दिया है, जबकि पूर्वांचल विश्वविद्यालय और पोखरा विश्वविद्यालय के लिए 38-38 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इसी तरह सुदूर पश्चिम विश्वविद्यालय के लिए 19 लोगों ने आवेदन किया है। मंत्रालय के अनुसार मध्य पश्चिम विश्वविद्यालय के लिए 20, लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय के लिए 11, कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय के लिए 15 तथा राजर्षि जनक विश्वविद्यालय के लिए 27 लोगों ने आवेदन दिए हैं। समिति आवेदकों के दस्तावेजों की जांच कर स्वीकृति उम्मीदवारों की सूची प्रकाशित करने और चयन प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी कर रही है। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मंत्री विराज भक्त श्रेष्ठ ने जगदुल्लाह जल विद्युत परियोजना का काम समय पर पूरा करने का निर्देश दिए हैं। जगदुल्लाह जल विद्युत कंपनी लिमिटेड के केंद्रीय कार्यालय के निरीक्षण के दौरान मंत्री श्रेष्ठ ने जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण कार्य को निर्धारित समय सीमा में पूरा करने का निर्देश दिया। मंत्री श्रेष्ठ ने विश्वास व्यक्त किया कि इन परियोजनाओं से स्थानीय निवासियों के जीवन स्तर में सकारात्मक परिवर्तन आएगा और देश के समग्र ऊर्जा क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान मिलेगा। उन्होंने कहा कि परियोजना निर्माण के दौरान आने वाली किसी भी तकनीकी या प्रशासनिक समस्या का समाधान मंत्रालय तत्काल करेगा। काठमांडू के टोखा नगरपालिका साथ स्थित धापासी ग्रीनलैंड आसपास के अतिक्रमित घर और टहरों को हटाया गया है। नगरपालिका के अतिक्रमित संरचनाएं हटाने में आनाकानी करने वालों के घर और टहरे डोजर की मदद से हटाए गए हैं। इससे पहले नगरपालिका ने 15 दिन की सूचना जारी कर सभी संबंधित लोगों से अतिक्रमित घर टहरे हटाने का अनुरोध किया था। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ 23 से 26 मई तक चीन की यात्रा करेंगे। इस दौरान वह चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग और प्रधानमंत्री ली कियांग से मुलाकात करेंगे। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता क्वा जियाकुन ने आज राजधानी बीजिंग में मीडिया ब्रीफिंग के दौरान बताया कि प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ चीन के पीएम ली कियांग के न्योते पर चीन जा रहे हैं। प्रवक्ता क्वा ने कहा कि शरीफ की यह यात्रा दोनों देशों के बीच होने वाली एक अहम बैठक होगी। उन्होंने कहा कि दोनों पक्ष प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर करीबी संवाद और समन्वय बनाए हुए हैं, अपने साझा हितों की प्रभावी ढंग से रक्षा कर रहे हैं और क्षेत्रीय शांति, स्थिरता तथा विकास को बढ़ावा दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि चीन को उम्मीद है कि दोनों पक्ष इस यात्रा को पारस्परिक दोस्ती को आगे बढ़ाने, हर क्षेत्र में सहयोग को गहरा करने और नए दौर में साझा भविष्य वाले और अधिक करीबी चीन पाकिस्तान समुदाय के निर्माण में नया अध्याय लिखने के अवसर के रूप में लेंगे। आज चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने पाकिस्तानी के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी को दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की वर्षगांठ पर बधाई दी है। इससे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी चीन का दौरा कर चुके हैं। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 28 से 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 28.8 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रतिनिधि सभा द्वारा वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयक 2082 बहुमत से पारित। संसद में प्रधानमंत्री के साथ प्रश्नोत्तर कार्यक्रम की मांग करते हुए प्रतिनिधि सभा की बैठक में विपक्षी दलों का अवरोध। आर्थिक सुधार और निजी क्षेत्र का मनोबल बढ़ाने के उद्देश्य से आगामी आर्थिक वर्ष का बजट लाने के पूर्व अर्थमंत्रियों की सलाह। और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ आगामी शनिवार जाएंगे चीन की औपचारिक यात्रा पर। रेडियो नेपाल से रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभ रात्रि।